इस साल एक नई फेडरल सरकार के सत्ता में आने के साथ पर्यावरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।
Australians have chosen and they have chosen change. A government that will act on climate change.
ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन का योगदान 17% है, इसलिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और उन उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है, इस बारे में सरकारें क्या कर रही हैं, इस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन हाउसिंग एंड अर्बन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माइकल फॉथरिंगहम कहते हैं कि लंबे समय से सब कुछ कारों के बारे में सोचकर ही बनाया गया है।
I think the way Australian cities are designed, much like North American cities, fairly car-dominated sort of use of land, and you know the history of our cities has been one where the use of land for road purposes is fairly dominant.
कारों का प्रभुत्व बहुत सारी सरकारी परिवहन नीति के लिए शुरुआती बिंदु रहा है। कुछ राज्य दूसरों की तुलना में आगे हैं। क्वींसलैंड के सड़क मंत्री मार्क बेली ने 2016 में इलेक्ट्रिक वाहनों के रिचार्जिंग के लिए एक सुपर हाईवे की घोषणा की।
This is the future. You know, electric vehicles are taking off all around the world. We've got to get them going in Queensland and getting infrastructure there to support them is an important part of that.
शुरुआती उत्साह के बावजूद परियोजना पर प्रगति कुछ धीमी रही है। 6 साल बाद क्वींसलैंड में अब सिर्फ 31 चार्जिंग स्टेशन हैं, जो गोल्ड कोस्ट पर कुलांगाटा से लेकर सुदूर उत्तर में पोर्ट डगलस तक है। पूरे देश में 3000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट है, जिनमें से अधिकांश न्यू साउथ वेल्स में और सबसे कम नॉर्दर्न टेरिटरी में है। और नई कारों में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 0.78% है, जो विश्व औसत से काफी कम है। क्लाइमेट काउंसिल की प्रवक्ता डॉक्टर जेनिफर रेनर कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ईवीएस के रास्ते में कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक मुद्दे आ रहे हैं।
The cheapest EV available in Australia at the moment costs about $45,000. That compares to the cheapest EV available in Europe at about $18,000. One of the reasons for that is because in those markets they have much more choice, much more range, because manufacturers are prioritizing sending those vehicles to markets that have fuel efficiency standards, which give them an incentive to do that.
अन्य देशों की सरकारें भी अपने राष्ट्रीय काफिले में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक संक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी खरीद पर सब्सिडी दे रही हैं। फेडरल सरकार कहती है कि वे अब इन कारों को सस्ता करने के लिए कदम उठा रही हैं। अगस्त में ऑस्ट्रेलिया इलेक्ट्रिक वाहन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बावन ने कहा कि वे दक्षता मानकों को पेश करने के इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की पहली इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति विकसित करने में मदद के लिए सितंबर में एक चर्चा पत्र शुरू किया जा रहा है।
I mean, if they're introduced, it's only going to help in emissions reduction. So that's a good thing. That's a good thing. And of course, if we do and they're implemented and they work, they'll be reflected in the updates I'll give to Parliament every year.
इस बीच एक नया सर्वेक्षण अब सुझाव दे रहा है कि कम कारों और अधिक सार्वजनिक परिवहन के लिए लोग इच्छुक हैं। डॉक्टर रेनर बताती हैं कि क्लाइमेट काउंसिल सर्वे, जिसे पीपल एंड ट्रांसपोर्ट पोल 2022 कहा जाता है, ने 2000 से अधिक लोगों से ट्रेन और बसों पर उनकी राय मांगी।
Australians want transport options that are better for our hip pockets and for our climate. 8 in 10 people believe that governments should invest more in public transport, and more than 2/3 want governments to deliver more footpaths and bike lanes across the country.
10 में से 7 लोग ऑस्ट्रेलिया की सारी बसों को जितनी जल्दी हो सके विद्युतीकृत देखने के लिए उत्सुक हैं, और यहाँ तक कि नवीनीकरण भी चाहते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बिजली आपूर्ति का अधिकांश यानी 75% अभी भी कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशनों से आता है। कुछ राज्य सरकारें इस मामले में पहले से ही काफी आगे हैं। न्यू साउथ वेल्स में परिवहन विभाग राज्य की बसों को विद्युतीकृत करने और 2030 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है। परिवहन मंत्री डेविड एलियट नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बस वे वीडियो में भी दिखाई दिए हैं।
Using locally sourced clean energy just makes good business sense. We really are looking forward to walking away from having to suffer the variations of fuel prices, diesel prices, and of course with this technology, not only are we getting certainty with supply, but we're also getting a much cheaper option.
इस साल पहली बैटरी इलेक्ट्रिक बसों को उत्तरी पर्थ रूट पर उतारा गया है और विक्टोरिया में 36 शून्य उत्सर्जन बसों को परिवहन नेटवर्क में जोड़ने की योजना चल रही है। हाउसिंग एंड अर्बन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माइकल फॉथरिंगहम का कहना है कि विडंबना ये है कि जैसे जैसे सार्वजनिक परिवहन हरा भरा होता जा रहा है, COVID-19 ने इसकी मांग को प्रभावित किया है।
So 20 years ahead of COVID, you know, throughout the 2000s, we've been seeing year-on-year growth in use of public transport as people shy away from driving individual cars to mass transit formats that are more energy efficient and often cheaper, don't involve parking at the end of them. But with COVID and the risk of spread of illness, we've seen a bit of a reversal of that, and in fact, some fairly strong preferences for people to avoid public transport in favour of individual cars or active transport, so walking and bike riding and so on.
Dr. Rayner, न केवल एक स्वच्छ परिवहन विकल्प के रूप में, बल्कि जीने के बेहतर तरीके के रूप में चलने और साइकिल चलाने के विकल्पों के लिए अधिक समर्थन देखना चाहती हैं, और वे कहती हैं कि हालांकि कोविड ने कुछ लोगों को इससे दूर रखा है, विद्युतीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्हें वापस जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
Have another try of public transport again, where they might not have been using it regularly for a while, because it's a new experience and it's a better experience for people, which is what we're seeing through this poll, that they understand cleaner, quieter electric public transport will offer them a better experience.
SBS News के लिए डेबोरा ग्रोर की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया प्रियंका हतवर्णे ने।